हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। स्नेहा जी नहीं चाहती थीं कि झलक उनकी वजह से परेशान हो, क्योंकि झलक वैसे ही उनके लिए बहुत कुछ कर चुकी थी। उसने इतने महंगे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया था, न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना अकेले किया था। वे नहीं चाहते थे कि झलक की ज़िंदगी में फिर से कोई बाधा आए, लेकिन अपने भाई से घर की हालत सुनकर झलक का दिल भर आया। वो बेचैन होकर बैठ गई और सोचने लगी, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि अपने ही परिवार की मदद भी नहीं कर पा रही हूँ? उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आने लगी। उसे लगा कि इससे अच्छा तो उसकी पहले वाली नाइट क्लब की नौकरी ही थी। कम से कम उस वक्त उसे पैसे तो मिलते थे जिनसे वो अपने परिवार को ढंग से खाना तो खिला पा रही थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी किस ओर जा रही थी। दर्द, घुटन और बेबसी उसके दिल में भरती जा रही थी। और सिद्धार्थ खुराना ने भले ही उसे नौकरी दे दी हो, लेकिन हालात फिर भी उसके काबू से बाहर होते जा रहे थे। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मुझे आसानी से काम नहीं करने देगा और ना ही मुझे टाइम से पैसे देगा। क्या करूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चारों तरफ से फंसी हुई सी महसूस कर रही हूँ। झलक काफ़ी ज़्यादा बेचैन थी और उसकी आंखों में दूर दूर तीके नींद नहीं थी। अपने भाई को ये बोलकर कि वो सब ठीक कर देगी, वो तुरंत वहाँ से उठकर बैल्कनी में आकर खड़ी हो गई थी। और जब वो बैल्कनी में आई तो उसने देखा कि बैल्कनी की एक तरफ रणविजय अनामिका के साथ बैठा हुआ था और दोनों में किसी बात को लेकर ज़बरदस्त बहस हो रही थी। भले ही उन दोनों की आवाज़ झलक तक नहीं पहुँच रही थी, लेकिन उनके रिएक्शन से ये साफ पता चल रहा था कि दोनों किसी बात को लेकर ज़ोरदार झगड़ा कर रहे हैं। झलक ये देखकर चौंक गई कि भला एक मामूली सी मैनेजर अपने बॉस से इस तरह से झगड़ा कैसे कर सकती है। उसे ये थोड़ा अजीब लगा और वो सोचने लगी कि आखिरकार इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। और ये अनामिका मुझे इस रणविजय की मैनेजर तो कहीं से कहीं तक नहीं लगती है। सीन क्या है आखिरकार? ये सवाल झलक के दिमाग में जोरों से घूमने लगा था। लेकिन जैसे ही रणविजय की नज़र बैल्कनी में खड़ी हुई झलक पर पड़ी, वो पूरी तरह से शांत हो गया। उसने अपनी आंखों से अनामिका को शांत रहने का इशारा किया और जल्दी ही इस बहस को खत्म कर दिया। झलक उन्हें देख रही है, ये समझते हुए वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उलट पलट करने लगा। झलक को ये सब थोड़ा अजीब लगा और वो तुरंत वहां से उठकर अंदर आ गई। अंदर आकर वो सोचने लगी कि आखिरकार मेरी ज़िंदगी में ये सब क्या चल रहा है और ये लोग हैं कौन जो बिन बुलाए मेहमानों की तरह मेरी ज़िंदगी में आते जा रहे हैं। अरे, मेरा किसी से कोई लेना देना भी नहीं है। ऊपर से वो आकांक्षा, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और फिलहाल मुझे सबसे पहले मीरा रायचंद से मिलना चाहिए। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उल्टा सीधा कहने की? झलक का दिमाग जोरों से चल रहा था। फिलहाल देर ना करते हुए जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर जाने लगी, अचानक उसका सिर घूम गया और उसे चक्कर सा आ गया। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी। ऑलरेडी शाम हो चुकी थी तो उसने हिम्मत नहीं की कि वो वापस बाहर जा सके, इसलिए वो सीधा वापस बेड पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना को जैसे ही ये पता चला कि झलक ऑफिस से चली गई है, उसे काफ़ी बुरा लगा। लेकिन फिलहाल उसने अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल किया और आज ऑफिस से पूरे एक घंटा पहले ही वो सीधा खुराना मैंशन के लिए रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर दादी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। अब उन्हें सिर्फ सिद्धार्थ के आने का इंतजार था ताकि वो सारी बातों के बारे में उसे बता सके, क्योंकि इस पूजा में नए नवेले पति पत्नी यानी जोड़े का बैठना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए उन्होंने सारी तैयारी करने के बाद झलक और सिद्धार्थ के लिए जो कपड़े तैयार किए थे उन्हें खुद अपने पास रख लिया था। जैसे ही सिद्धार्थ ऑफिस से सीधा घर आया, उन्होंने तुरंत उसे रोक लिया और सारी बातों के बारे में बताते हुए कहा कि कल हर हाल में सिद्धार्थ को झलक के साथ पूजा में बैठना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उर्वशी खुराना से बुरा कोई नहीं होगा। सिद्धार्थ मन ही मन जल उठा। वो सोचने लगा कि इस लड़की के सारे प्लान कामयाब होते जा रहे हैं। वो तो यही चाहती है कि किसी न किसी तरीके से खुराना परिवार में पूरी तरह शामिल हो जाए, और इसी तरह पूजा और रिचुअल्स में बैठकर वो इस बात पर ठप्पा लगा देना चाहती है कि वो खुराना परिवार का हिस्सा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो तुरंत दादी को देखकर बोला कि आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक समझौता था। उस वक्त लोगों की बोलती बंद करने के लिए किया गया था। इस वक्त उस लड़की के साथ पूजा में बैठने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये सारी बातें पास में खड़े हुए अनामिका और रणविजय भी सुन चुके थे। रणविजय ने सिद्धार्थ की बातें सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और मन ही मन बोला कि पहली बार ये सिद्धार्थ खुराना मुझे अच्छा लग रहा है, काश ये ऐसा ही बोलता रहे। लेकिन अनामिका के दिल में थोड़ी सी उलझन पैदा हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ झलक के बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकता है, क्योंकि अनामिका को अब भी याद था कि जब उसने पहली बार उन दोनों को साथ देखा था तो उसे लगा था कि वे मेड फॉर ईच अदर हैं। दोनों एक दूसरे का काफ़ी ख्याल भी रखते थे। लेकिन आज सिद्धार्थ के मुंह से झलक के लिए ऐसी बातें सुनकर अनामिका को थोड़ा अजीब और बुरा दोनों लग रहा था, और वो मन में सोच रही थी कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। आखिरकार फिलहाल सिद्धार्थ बोला था, देखिए मॉम, वो लड़की केवल यहाँ कुछ दिनों की मेहमान है, बहुत जल्दी वो जहां से आई है वहीं चली जाएगी। जब तक लोगों के बीच फैली ये जो अफवाह है ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, वो लड़की तभी तक इस घर में मौजूद है। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं उस लड़की को यहाँ से निकालकर बाहर कर दूंगा। दादी प्लीज आप किसी तरह की कोई झूठी उम्मीद मत पालिए, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं देख सकता हूँ और ना ही आपको कोई झूठी तसल्ली दे सकता हूँ। ये बोलकर सिद्धार्थ जैसे ही वहाँ से जाने लगा तभी उर्वशी जी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। वहीं रणविजय उर्वशी जी को देखकर थोड़ी तेज आवाज में बोला, दादी कैसी हैं आप, क्या हुआ आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था जैसे दादी किसी भी पल बेहोश हो सकती हैं। वहीं रणविजय की आवाज सुनकर सिद्धार्थ के कदम खुद ब खुद रुक गए और वो भी मुड़कर दादी को देखने लगा। दादी को देखकर वो जल्दी से उनके पास गया और उन्हें पानी पिलाने लगा। ये सब देखकर वो पूरी तरह से उदास हो चुका था। तब सिद्धार्थ बोला था, दादी प्लीज आप बच्चों जैसा बर्ताव करना कब बंद करेंगी? मुझे समझ नहीं आता कि आप इस तरह अपनी तबीयत खराब करके अपनी सारी बातें मनवाने की कोशिश कैसे कर लेती हैं? क्यों करती हैं आप ऐसा? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दादी प्लीज आप मेरी दादी हैं, आप उस लड़की के लिए इस तरह की हरकतें कैसे कर सकती हैं? सिद्धार्थ की बात सुनकर दादी ने कोई जवाब नहीं दिया और हल्की आंखों में नमी लिए बोली थी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं और अब हमारी कोई हैसियत नहीं रही, हमारी बोली हुई बातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है तुम लोगों की नजरों में, इसीलिए तुम लोग अपने अपने फैसले खुद ही करते हो। पहले तो तुमने उस लड़की से उसकी मर्जी के बिना शादी कर ली और अब अगर हम तुमसे उस रिश्ते को एक मौका देने को कह रहे हैं तो तुम वो देने के लिए भी तैयार नहीं हो, आखिरकार करना क्या चाहते हो तुम? दादी की आवाज बहुत तेज हो गई थी।
तब सिद्धार्थ ने मन ही मन कहा, मानना पड़ेगा उस लड़की ने न जाने मेरी दादी पर क्या जादू कर दिया है कि वो पूरी तरह उसके वश में आ गई है। दादी उस झूठे रिश्ते को देखने तक को तैयार नहीं है, आखिरकार ऐसा कौन सा जादू करती है ये लड़की? ये लड़की कितनी मक्कार है, न जाने कब इसकी सच्चाई सामने आएगी। वहीं रणविजय चुपचाप गुस्से से दादी को घूरते हुए देखने लगा था, मानो दादी की बातें सुनकर वो काफी हद तक अंदर से गुस्से से भर गया हो। तभी सिद्धार्थ दादी की बात सुनकर बोला था, ठीक है,